हरे कृष्ण। सो आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम भागवतम के अष्टम स्कंद आठवें स्कंद से हम पाठ कर रहे हैं और 21वें अध्याय पर भी हम हैं। इस अध्याय में बहुत ही कम पर्पट्स हैं, तो कल जो श्लोक संख्या 22 तक लिया था इस बेस विमला प्रसाद पूजी ने, उसके आगे हम 23 से लेके आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। इससे पहले 23 से जो श्लोक संख्या का जो तात्पर्य है मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 23 अनुवाद, ये बलि महाराज बता रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने पार्षदों को। पहले तुम सब ने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके हर्ष से शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से देव सबसे अधिक शक्तिमान है, न च देवात परम बलम। बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल में देव अनुकूल होने के कारण किसी प्रकार विजय हुए थे। क्योंकि वही देव अब अनुकूल नहीं रहा था, अतः उनके विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुचरों को बड़ी बुद्धिमानी से लड़ने से वर्जित किया। श्लोक संख्या 24 अनुवाद, जब तक भाग्य हमारे अनुकूल ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतएव हमें उस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्लोक संख्या 25 सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्य तथा दानों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। तो हम 26वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथ तर्कशय सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् भवन्द वारुणे पाशे बलिं सुते हनीकृतो। अथ तार्क्ष्ये सुतो ज्ञात्वा विराट पुरुषो विराट प्रभु चिकीर्षितम् भवन्द वारुणे पाशे बलिं सुते हनीकृतो। अथ ताश्रय सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् भवन्द वारुणे पाशे बलिं सुते हनीकृतो।
Yeah.
शब्दतात शब्दार्थ शब्दार्थ वर्ड मीनिंग अथ तत्पश्चात ताक्षे सूत गरुड़ ने ज्ञात्वा जानकर विराट परीक्षित प्रभु चिक्षिताम भगवान वामदेव की इच्छा से बबंद बंदी बना लिया वारुणे वरुण से संबंधित पाशय रस्सियों से बलिम बलि को सूते सोमरस पान के हनी दिन क्रतो यज्ञ के समय अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन परिषित पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया। तात्पर्य भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहनशीलता तथा भक्ति असंगिंद रूप से अतिनिष्ठ अतिश्रेष्ठ है। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं जुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातम् सहगन रघुनाथांवितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखांवितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्व गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे भगवानी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण। सबका सभी का स्वागत है आज की इस भगवत कक्षा में और हम आठवें स्कंद से 21वें अध्याय के 26वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। और कुछ चर्चा करने से पहले मैं जितने भी वरिष्ठ भक्त और जितने भी वैष्णवगण यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ कि उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी कुछ भागवत का गुणगान कर सकता है। तो आज हम ये बलि महाराज के प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं। तो जब यह प्रसंग मैं इस प्रसंग को पढ़ रहा था तो कई वरिष्ठ भक्तों से मैंने डिस्कस भी किया तो इसमें बलि महाराज की एक बहुत अच्छी खासकर इस जो प्रसंग अभी चल रहे हैं एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर पता लगती है कि अगर बलि महाराज के ऊपर देखें प्रेशर कितना था और ये प्रेशर कैसे बढ़ता ही जा रहा है। समय वामनदेव एक बालक के रूप में आए और तीन पग भूमि मांगा उसके बाद दे भी दिया शुक्राचार्य का प्रेशर था पहले तो, वहां से श्राप लिया,
हरे कृष्ण।
तो शुक्राचार्य का जी का भी प्रेशर था, वहां से उनको श्राप मिला और उनको भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और दूसरा बलि यहाँ पर वामन देव ने भी प्राइस बढ़ा लिया और दो पक्ष से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो देखा जाए कि बलि महाराज इतनी पहले अचीवमेंट मिल चुकी है, पहले ब्राह्मणों के भृगुमुनि के जो डिसेंडेंट्स हैं उनके आशीर्वाद के कारण इतनी अचीवमेंट प्राप्त हुई। और फिर उनको ये भी स्मरण हुआ कि शुक्राचार्य ने मुझे श्राप दिया है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पहले मुझे ये सारी सारा ब्रह्मांड मुझे मिला था, लेकिन अभी ये सामने सामने दिखता नजर आ रहा है कि वामन देव कैसे दो पग से पूरे ब्रह्मांड को छीन लिया। तो पहले तो एक कि इतनी अचीवमेंट मिली थी सारी छीनते हुए दिख रही है, दूसरा अपने गुरु को भी अपमानित करना पड़ा एक तरफ से उनकी आज्ञा का ना पालन करके, तीसरा अब सेना भी बिल्कुल लड़ने जा रही थी तब देखा कि सेना ने कि बलि महाराज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है वो यज्ञ में बैठे हैं अपने सच्चाई का पालन करना चाहते हैं तो कम से कम ठीक है ये कुछ नहीं कर रहे लेकिन हम करते हैं, हम वो इंडिपेंडेंट अपना लड़ने के लिए चले गए और बड़े सारे सैनिक लोग मर भी गए। फिर बलि महाराज ने देखा कि इतने सारे सैनिक मर गए हैं तो उनको मना किया। और यहाँ पर एक बलि महाराज का बहुत ही अच्छा गुण नज़र आता है कि उन्होंने धैर्य से कार्य किया और एक स्टेबल लीडरशिप या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरा अपना कार्य किया कि जब देखा कि सामने भगवान विष्णु है और ह्यूमनली एंडीवर से अपने अपने प्रयासों से तो हम इनको जीत नहीं सकते, इसलिए ये समय ठीक नहीं है कि हम इनसे लड़के और विजय पाने का साहस करें क्योंकि विजय प्राप्त होगी नहीं। तो यहाँ पे एक बलि महाराज का एक, क्योंकि लड़ाई जैसे कल गुरु जी बता रहे थे दिमाग से लड़ी जाती है, हाथों से नहीं लड़ी जाती, तो यहाँ पर एक बलि महाराज का एक बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड पता लगता है, एक लीडरशिप क्वालिटी। और यहाँ पे प्रभुपाद इंग्लिश में इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि बलि महाराज की जो टॉलरेंस और डिवोशन, सहनशीलता और जो भक्ति थी, दिस वॉज सुपर एक्सीलेंट। इसी गुण को प्रभुपाद यहाँ पर आगे प्रदर्शित करते हैं और भगवान ने भी उनके लिए ऐसी योजना बनाई ताकि उनका ये गुण निकल कर आए और उनका जो बलि महाराज आत्मसमर्पण के आचार्य माने जाते हैं ये निकल कर आए उनका गुण। तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में अलग अलग ये व्यवस्था करते हैं ताकि उनके गुण निकल कर आए। और जैसे हमने अभी भक्ति व्यय में पढ़ा कि भगवान इस प्रकार योजनाएं बनाते हैं ताकि एक जो गंभीर साधक है, गंभीर भक्त है, उसको कैसे ड्रैगिंग द सिंसियर सोल नियर टू द लॉर्ड, कैसे अपने करीब लेके आते हैं। तो ये प्रदर्शित होता है बलि महाराज के इस प्रसंग से भी। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद मुख्य तात्पर्य में जो पॉइंट प्रदर्शित कर रहे हैं कि बलि महाराज का जो सहनशीलता का जो गुण था वो बहुत ही सुपर एक्सीलेंट था। और यहाँ पर इतने प्रेशर के अंदर, और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा। कल हम ये डिस्कस भी कर रहे थे भक्ति वैभव क्लास में कि अगर कोई और व्यक्ति होता बलि महाराज की जगह तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, अपना शरीर छोड़ देता शायद। तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्रोवोकेशंस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अपना संयम बनाए रखें। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये सहनशीलता के गुण को हम भी विकसित कर सकते हैं और ये सहनशीलता होती क्या है और ये क्यों हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसकी ज़रूरत है और इसका सही एप्लीकेशन या सही कंसेप्शन क्या है। तो इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हम रोज सुबह पढ़ते हैं कृष्ण भावामृत में, हमारा क्या लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण कॉन्शियस को प्राप्त करना। तो इसमें फिर सहनशीलता की क्या जरूरत है? और प्रभुपाद इस सहनशीलता के गुण को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कई जगह लेक्चर्स में, द एबिलिटी टू फॉरगिव, कि जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो दूसरों को क्षमा कर सके। और इसका एक कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी इसका ऐसा भी एक मापदंड बताते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति है, द ग्रेटनेस ऑफ वंस स्ट्रेंथ इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ वंस एबिलिटी टू टॉलरेट इन प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि एक व्यक्ति की महानता का तब पता लगता है कि जब वो विपरीत स्थितियों में भी अपनी सहनशीलता को बनाए रखे। तो यानी बहुत जल्दी परेशान हो जाना किसी विपरीत परिस्थिति में या डिस्टर्ब हो जाना, एजिटेट हो जाना, ये बहुत ही साधारण है और एक दिस इज अ साइन ऑफ वीक माइंड बेसिकली, कि एक कमजोर हृदय की निशानी है कि बहुत जल्दी परेशान होना, डिस्टर्ब होना। तो और इसके विपरीत एक मजबूत हृदय की ये पहचान है कि वो किसी भी स्थिति में इस गुण को बनाए रखे। तो अब जब हम ये कहते हैं पहला जो जिस चीज़ को हम लेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, तो इसमें सहनशीलता का क्या रोल है, कहाँ पर यह सहनशीलता इस क्या क्या रोल प्ले करती है जिससे हम इस लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कुछ भक्त इस सहनशीलता के गुण को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हालांकि एक सिर्फ एक गुण है, एक वैल्यू, एक अपना वैल्यू सिस्टम है या फिर एक वैल्यू है। जो गुण का कार्य होता है वो लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, ये नहीं कि सिर्फ हम कृष्णा भावनित में आए हैं सहनशील बनने के लिए। सहनशील तो बहुत लोग बाहर और भी मिल जाएंगे, पेड़ भी सहनशील होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सहनशीलता का गुण भगवान के रास्ते तक हमें पहुँचाने में लाभ या हेल्पफुल है, इसलिए इस गुण का विकास करना जरूरी है। तो सहनशीलता यानी एक सपोर्टिंग फैक्टर है कृष्णा कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए, और दूसरा जब विपरीत स्थितियां आती हैं तो इससे हमारा एक अपना जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों की, अपने जीवन में भक्ति के जीवन में हमने जितना प्रयास किया है उसका भी टेस्ट होता है, यानी एक इंडिकेटर भी है। तो दो मैं इसके जो वरिष्ठ भक्तों से चर्चा करने के बाद दो इसके कार्य देख पाया कि एक तो ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सपोर्टिंग फैक्टर जैसे हम तिनाद अपि सुनिश्चय श्लोक भी सुनते हैं कि तरो अपि सहिष्णुना, और कीर्तन ये सदा हरि हमारा ये गोल है। तो कैसे ये सपोर्ट करता है हमारे इस गोल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बात पे थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता रहे, हर छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो कीर्तन ये सदा हरि नहीं कर पाएगा। तो यानी एक सपोर्टिंग फैक्टर है, यह आपको मदद करता है ये गुण कीर्तन ये सदा हरि करने में। और दूसरा, जब कोई कीर्तन सदा हरि कर रहा है तो उसके अंदर एक गुण प्रकट भी आएगा, जैसे यशयासी भक्ति भगवति अकिंचने यशयासी भक्ति भगवति अकिंचना। तो जो भक्ति का जो प्रयास करते हैं तो उनके अंदर सारे गुण प्रकट होते हैं। तो दिस इज वन इंडिकेटर ऑल्सो, एक ये संकेत देता है कि कितना प्रयास हो रहा है और कहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस चीज़ को मैं एक कंसेप्ट तो इस कंसेप्ट को मैं लेना चाहता था। तो जैसे हम जीवन का लक्ष्य जानते हैं कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, तो जैसे उदाहरण के लिए इस सहनशीलता का कैसा एक ये गुण हमारे जीवन में रोल प्ले करता है कि जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी की एक इंस्ट्रक्शन है कि आपका मेरे प्रति प्रेम तब प्रदर्शित होगा, तब दिखेगा जब आपस में आप मिलकर कॉपरेट करेंगे, आपके कॉपरेशन से मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो अब जब कॉपरेशन की बात होती है, सहयोग की बात होती है, तो यहाँ पर एक सहनशीलता का गुण बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में अलग अलग लोगों के स्वभाव के लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग हैबिट्स के लोग आते हैं, अलग अलग ओपिनियन के लोग भी लोग व्यक्त करते हैं, तो सबका समन्वय करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए ये गुण बहुत जरूरी चाहिए। और खासकर जब हम अलग अलग ऑपोजिट ओपिनियंस को सुनते हैं तो इस गुण की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जब हमारा लक्ष्य है कि गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना, तो उसमें भी ये लाभ ये हेल्प करता है। और ये इंडिकेटर जैसे हमने बताया इस प्रकार से, जैसे कि जब हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं या कितना हमें अनुभूति हो रही है, तो जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है या विपरीत स्थितियाँ आती हैं तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार हमारा प्रयास चल रहा है, कहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ पे प्रयास करने की जरूरत है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव सिंह रामायण की जय। सो पहला ये एक जो कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे कि सहनशीलता अपने आप में एक वैल्यू है जो हमें कृष्णा भावनित में आगे बढ़ने में मदद करता है, और हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ सहनशील होना नहीं है। तो जैसे एक उदाहरण आता है कि युधिष्ठिर महाराज से जब कहा भगवान कृष्ण ने कि आप अश्वत्थामा के लिए बोले कि वो मारा गया, तो उन्होंने उस झूठ को बोलने से मतलब वैसे इनकार कर दिया उस प्रकार से। तो हमारे जो क्राइटेरिया है कि जो हाईएस्ट जो गोल है वो ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति भगवान को प्रसन्न करना, ये नहीं कि सिर्फ एक गुण को ही लेके मतलब उसको ही टारगेट बना ले, उसको ही जीवन का लक्ष्य बना लें। तो शायद हो सकता है वो गुण हमारे अंदर आ जाए कि बहुत जैसे गुण होते हैं, बहुत लोग क्लीन रहते हैं, बहुत ट्रूथफुल रहते हैं, हमेशा सच रहते हैं, ऑनेस्टी ऑनेस्टी बोलते हैं, तो हो सकता है ये शायद गुण हो भौतिक लोगों में, लेकिन अगर उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड नहीं है तो वो अपने आप में गुण इतना हमें भगवत धाम जाने के लिए मदद नहीं कर पाएगा या फिर उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो पहला ये सहनशीलता हमारा लक्ष्य नहीं है, ये सेकेंडरी गोल हो सकता है, अपने प्राइमरी गोल जो कृष्णा कॉन्शियस को हमें अचीव करना है, भक्ति को अचीव करना है, उसमें सहायक करता है। तो पहला कंसेप्ट ये। अब हम देखते हैं कि ये गुण अलग अलग जो महाजन है या फिर जो भगवान के महान भक्त हैं, इस गुण को कैसे दर्शाते अपने जीवन से। तो मैंने कुछ महान भागवतम से कुछ महान भक्तों के बारे में मैं कुछ पढ़ा, और जब उनके सामने ये विपरीत स्थितियां आई तो उनका क्या रिएक्शन था, तो इसके बारे में। जैसे अब विदुर का जैसे भागवतम में आता है कथन, तो जब विदुर को दुर्योधन ने जब वैसे धृतराष्ट्र ने कंसल्टेशन के लिए बुलाया, तो उन्होंने तब कहा कि ये तो आपको दुर्योधन बिल्कुल ही इविल माइंड है, तो इसको आपको बाहर निकालना चाहिए। तो ये सब बातें दुर्योधन भी सुन रहा था। तो जब दुर्योधन ने ये बातें सुनी तो फिर विदुर के सामने ही बहुत उनको सुनाया, बहुत ही चेस्टाइजमेंट दी, बहुत ही बुरे शब्द कहे उनको, और कहा कि इनको तो घर से बाहर महल से बाहर निकाल देना चाहिए, यहाँ पे जासूस बन के रह रहे हैं। तो जब ये विदुर ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपना जो धनुष था वो वहीं पर ही दरवाजे के वहीं पर ही रख दिया और वहाँ से निकल के चले गए। तो जब वो निकल रहे थे तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हालांकि इसका जो ट्रांसलेशन भी आता है भावतम में तो यही आता है कि विदुर ये समझ पा रहे थे कि ये सिर्फ भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही खेल चल रहा है, कि दुर्योधन अभी बहिरंगा शक्ति में है तो उसके प्रभाव के कारण उसने मेरे को बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन वो ये प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बताते हैं, विदुर अपने बारे में ऐसा सोच रहे थे कि ये अंतरंगा शक्ति का एक बहुत बड़ी योजना भी है। क्या योजना है? वो अंदर से विदुर धन्यवाद कर रहे थे दुर्योधन को कि आपके कारण अब जो शब्द आपने मुझे बोले इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अब आपके इन शब्दों के कारण मैं भगवान की तीर्थ यात्रा में अलग अलग स्थानों पर जा पाऊंगा और भगवान को पूर्ण समर्पित कर पाऊंगा। तो एक जो हमें यहाँ पर एटीट्यूड जो एक व्यवहार मिलता है कि जब ऐसी प्रोवोकेशन या कुछ ऐसा कठिन शब्द या जटिल शब्द जब बोले जाए किसी को, तो कैसे यहाँ पर भगवान के भक्त अपना दिखा रहे हैं कि वो थैंक करें, दूसरों को धन्यवाद करें उस स्थिति के लिए। तो दूसरा जैसे परीक्षित महाराज के प्रसंग में मिलता है, जब परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी थी, वो श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि श्रमिक ऋषि बहुत ही ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनसे पानी के लिए रिक्वेस्ट करी, याचना करी, तो देखा कि ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तो हालांकि एक एटिकेट होता है कि जब राजा आए तो उसको सीट देना चाहिए, पानी देना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पर एक अपने तीर से मरा हुआ सांप उनके गले में डाल के चले गए। जब वो जा रहे थे तब ये सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी की टीका को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि हालांकि ये भगवान की योजना थी कि कैसे परीक्षित महाराज को वापस भगवत धाम बुलाया जाए, तो इसलिए उनके माइंड में सो कोल्ड एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी, जिसके कारण उन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया। हालांकि उद्देश्य था ये भगवान का और इंस्ट्रूमेंट बनाया था श्रृंगी को। तो जब ये अब ये सीन हो गया तो परीक्षित महाराज जब अपना पश्चाताप कर रहे थे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि पहले ये तो पश्चाताप करना एक अच्छे इंसान की, अच्छी सोल की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो फिर जब श्रमिक ऋषि जब को ये पता लगा कि श्रृंगी ने ऐसे श्राप दे दिया है तो अब वो सोचने लगे। तो पहले वो कहते हैं कि भगवान श्रृंगी को कि उनको तो खूब डांटा है, उसके बाद कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको चाहे डिफेम या उनकी अवहेलना की जाए, उनको कर्ज दिया जाए या उनको मार भी दिया जाए, लेकिन कभी वो बदला नहीं लेते। फिर वो सोच रहे थे अपने अंदर, प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अभी तो श्राप तो मिल चुका है और ये भगवान के भक्त हैं, ये तो वापस इसको काउंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सनल अफेयर है, क्योंकि प्रभुपाद इसको लिखते हैं, अगर भक्तों के पर्सनल अफेयर में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ होता है तो वो उसको अपने कर्म मान के उसको सह लेते हैं, लेकिन अगर किसी और भक्त में ऐसा या भगवान के प्रति ऐसे कुछ अवहेलना कोई करता है तब वो स्ट्रांग स्टेप लेते हैं। तो शमिक ऋषि ने सोचा कि ये तो अब पर्सनल अफेयर है, परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये तो कुछ पर्सनल कुछ एक्शन लेंगे नहीं, ना इसको काउंटरेक्ट करेंगे। हालांकि वो काउंटरेक्ट भी कर सकते थे और उल्टा श्राप भी दे सकते थे, कुछ रिवेंज नहीं लिया, कुछ बदला नहीं लिया और चुपचाप भगवान की योजना समझते हुए इसको सह लिया। तो दूसरा जो उदाहरण मिलता है यहाँ पे परीक्षित महाराज का, कि ऐसी कुछ प्रोवोकिंग सिचुएशन में या विपरीत स्थितियों में कैसे वो भगवान की शरण ले रहे हैं, और अब वो ये इसको एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में, कि कैसे अब भगवान की शरण ली जा सकती है। और फिर वो अलग अलग वहाँ पे सेजेस और साधुओं से, संतों से कंसल्टेशन लेते हैं कि अब इस समय क्या करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा, जब नारद मुनि को, जब नारद मुनि ने दक्ष के जो पहले 10,000 पुत्र थे हरियशस्व, तो उनका उद्धार किया, फिर दक्ष ने दोबारा संतान उत्पत्ति करी, उसके बाद 1,000 और उत्पन्न पुत्र उत्पन्न किए, उसके बाद उनका भी उद्धार किया। अब जब दक्ष को ये पता लगा तो उनको खूब भला बुरा कहा, और तो वहाँ पर जब भला बुरा सुना रहे थे दक्ष एक पिता के रूप में, तो नारद मुनि सुने जा रहे थे। तो लास्ट इस जो ये चैप्टर है, इसके लास्ट श्लोक के लास्ट तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हालांकि नारद मुनि वहाँ से जा सकते थे तुरंत, लेकिन वो वहीं पे खड़े रहे और दक्ष के इस जो स्ट्रांग शब्द थे, वर्ड्स, उनको सुनते रहे। तो ऐसा ये क्यों कर रहे थे नारद मुनि? उनके पास ये ऑप्शन था कि सब कुछ हटा कर, सब कुछ साइड करके जा सकते थे। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि वो इस अवसर का इंतजार कर रहे थे कि कब ये दक्ष के अंदर ये गुस्सा निकलेगा और उनके अंदर पश्चाताप आएगा और तब मैं उनको डिलीवर कर सकूँगा। तो यानी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक जो जो हमें बुरा भला कह रहा है, यहाँ पर जहाँ से प्रोवोकेशंस मिल रही हैं उसका भी भला सोच रहे हैं, कंपैशनेट एटीट्यूड नारद मुनि का, और उसके उद्धार के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर एक केस आता है कि जब दक्ष जब यज्ञ में जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, और वहाँ पर भगवान शिव उनको देखे खड़े नहीं होते, ब्रह्मा और भगवान शिव, तो इससे दक्ष को बहुत ही गुस्सा आता है और पूरी भरी सभा में वो कहते हैं भगवान शिव को कि आपकी आंखें बंदर की तरह हैं, मैंने किसी दबाव के अंदर अपनी बेटी का विवाह आपसे करवा दिया, तो मुझे ये करना नहीं चाहता, और बहुत बुरा सुनाते हैं। तो वहाँ पर जो शिव जी के जो फॉलोअर्स होते हैं उधर, और भिगुमणि के फॉलोअर्स होते हैं और दक्ष के भी फॉलोअर्स होते हैं, तो जब ये बुरा भला सुनते हैं शिव जी के बारे में, तो जो शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो इसको सहन नहीं कर पाते, वो फिर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट देने शुरू कर देते हैं, और फिर वहाँ से भृगुमणि और दक्ष के जो फॉलोअर होते हैं वो वहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, तो आपस में बहस हो रही होती है। तब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि शिवजी को बहुत ही बुरा लगता है, ही फील्स वेरी मोरोस, बहुत ही बुरा लगता है उनको, ये लगता है कि इसका तो आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना है नहीं, तो बेकार में क्या आर्ग्यूमेंट करें, क्या आर्ग्यूमेंट सुने, तो बिना किसी परवाह करें वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर एक और सिद्धांत मिलता है कि कहाँ पर ये टॉलरेंस की यूटिलिटी है ना, कि कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं, है ना, कि अपने पर्सनल के लिए हम पूरा टॉलरेट करने के तैयार हैं, लेकिन जब भगवान और भगवान के भक्त पर ये कुछ अवहेलना या ब्लास्फेमी होती है, उनका तिरस्कार किया जाता है, तब भक्त टॉलरेट नहीं करता। तो जिस प्रकार नंदीश्वर उनके शिव जी के फॉलोअर थे, उन्होंने ही सहन नहीं किया। और एक ये केस स्टडी मिलती है यहाँ पर कि जब चित्रकेतु महाराज जब भगवान के दर्शन करके जा रहे थे और उन्होंने देखा पार्वती और शिव जी को, शिव जी पार्वती को अपनी गोद में बिठाए और उनको कुछ व्याख्यान कर रहे थे, तब उन्होंने मजाक में कुछ वहाँ पर कुछ शब्द कहे, तो ये सुनकर पार्वती को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने फिर उल्टा उनको श्राप दिया कि आपका जो जन्म होगा वो निम्न योनि में जन्म होगा। तो जब ये चित्रकेतु ने श्राप सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे श्राप की कोई परवाह नहीं है, मुझे ना भौतिक सुख ना भौतिक दुख की परवाह है, मैं श्राप को स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही जब ये पार्वती ने श्राप दिया उनको, तो क्या किया उन्होंने, वो पार्वती के चरणों में पड़ गए और उनसे क्षमा मांगी और उनको पूरा प्रसन्न किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने पहले कि बाउ डाउन एंड प्लीज्ड हर। तो यहाँ पर एक व्यवहार और मिलता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसी प्रोवोकेशंस या विपरीत स्थिति हो, तो भक्त जो ये कष्ट दे रहा है उससे क्षमा भी मांगते हैं और दूसरा उनको प्रसन्न करने का भी प्रयास करते हैं। और जैसे एक उदाहरण और मिलता है शिवास ठाकुर के जीवन में, जब शिवास ठाकुर अपने घर में कीर्तन करते थे, कुछ उनके नेबर्स उनसे कुछ सही टर्म्स में नहीं थे, तो उनका कुछ नुकसान करने के लिए क्या किया, बाहर उनके घर के बाहर कुछ ऐसा तोड़ कर डाल दिया ताकि वो लगे कि दुर्गा का उपासक है जो अपने कृष्ण को कृष्ण भक्ति का ये ढोंग कर रहा है। तो जैसे ही देखा शिवास ठाकुर ने कि मेरे घर के बाहर ऐसा है और लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ देखिए मैं तांत्रिक हूँ, मैं दुर्गा का उपासक हूँ। तो कुछ डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी, अपना पर्सनल अफेयर देखा, और लेकिन फिर जब ने लोगों ने देखा कि ये खुद ही ऐसा कह रहे हैं तो विश्वास ही नहीं किया कि ये शिवास ठाकुर इतने अच्छे भक्त हैं, वैसा कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन केस स्टडीज में कि अलग अलग जब व्यवहार में अलग अलग प्रोवोकेशन में एक भक्त कैसा व्यवहार करता है। एक ही उसी सिचुएशन में एक भक्त धन्यवाद दे रहा है जिसने उसको ऐसा कष्ट पहुँचाया, उसी स्थिति को एक अपॉर्चुनिटी मान के भगवान की शरण ग्रहण करने का अवसर मान के उसको आगे भगवान की शरण ले रहे हैं, और कुछ भक्त बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, उसको सुन ही नहीं रहे, मतलब ऑब्लिवियस, बिल्कुल इनडिफरेंट टू दिस सिचुएशन। तो और कभी कभी कि जो सामने वाला जो कुछ ऐसा प्रहार कर रहा है उसे क्षमा मांग रहे हैं। और अब ये हम देखते हैं कि ये तो भावदम से कुछ उदाहरण थे, अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जीवन में भी कैसे ये इस सहनशीलता का गुण मिलता है। एक बार ये बात है जब हिज होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के साथ ही थे, वहाँ पे एक बैनर्जी नाम के एक व्यक्ति थे, तो पूरी सभा में उन्होंने प्रभुपाद जी को खूब निंदा करी उनकी। और फिर बाद में जब प्रभुपाद जी के पास ये भक्त गए बात करने के लिए, तो प्रभुपाद ने ये कहा कि ऐसा करो उस व्यक्ति को कल मेरे साथ प्रसाद के लिए बुलाइए। तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद अभी तो इतने तिरस्कार किया उसने आपका, इतने निंदा करी है, फिर कल आप उसको प्रसाद के लिए बुलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने समय कहा ये तो मेरे पुराने कुछ कर्मों का कारण होगा, पिछले जन्म में मैंने कुछ उनको कहा होगा और इसलिए इस जन्म में उन्होंने कुछ मुझे कहा है। तो अगले दिन उनको प्रसाद में बुलाया, पूरा इस इशू को सॉर्ट आउट किया, उनसे खूब प्रसन्नता से बात करी। तो यहाँ पे एक वही गुण मिलता है कि जब पर्सनल अफेयर हो, पर्सनल चीज पे अपना अटैक हो, तो व्यक्ति भक्त अपना ये मानेगा कि ये मेरे कुछ पुराने कर्मों का ही घर है। लेकिन हालांकि जब हम ऐसे लीडर की दृष्टि में देखते हैं तब ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये तो बस एक पर्सनल अफेयर था और ये आपके भाग्य में ये दुख लिखे थे तो इसलिए आपको मिलना ही था। लीडर की दृष्टि से जस्टिस करना जरूरी है, हालांकि पर्सनल अथॉरिटी की दृष्टि से जस्टिस करना जरूरी है, लेकिन पर्सनल व्यक्तित्व की दृष्टि से भक्त को यही सोचना चाहिए मैं पुराने कर्मों का है या फिर भगवान की कुछ इसमें अंदर कुछ हस्तक्षेप होगा, भगवान की इंटरफेयर होगी, भगवान की अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार से और आप प्रभुपाद के जीवन से देखें तो ये पूरा जीवन ही सहनशीलता पर आधारित है। इतने सालों तक भारत में प्रयास किया, कुछ नहीं मिला, कुछ प्रयास नहीं मिला। भगवद गीता लिखी वो भी बेच दी गई, दोबारा लिखी वो भी छोटी छपी, उसके बाद दोबारा उसको बड़ा करना पड़ा। तो एक बार की बात है जब ये मिराकल ऑन द सेकंड एवेन्यू में आता है कि जब एक बार माइकल को, जो मुकुंद गोस्वामी थे, तो जब माइकल को एक बार किसी ने इनवाइट किया कि यहाँ पर एक स्वामी जी, इंडियन स्वामी जी आए हैं और यहाँ पर गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, तो आप जाके उनसे मिलिए और वहाँ पर से बात कीजिए। तो माइकल इंडियन स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, तो वो वहाँ पे गया। तो जैसे उस बिल्डिंग में जा रहा था तो वहाँ पर उसने देखा कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी, यूरिन की और बियर की, पेशाब और बियर की। तो वो पहले अंदर जाने से कतरा रहे थे, क्या जाऊँ कि नहीं जाऊँ, यहाँ पर कोई आध्यात्मिक चर्चा नहीं होगी। तो उसने कहा चलो इतना दूर से आए तो ठीक है चले जाते हैं। और वहाँ पे देखा कि चार लोग बैठे थे, पांचवो खुद थे। और वहाँ पे देखा कि एक जॉन नाम का व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी को पानी सर्व करा था, और प्रभुपाद ने पानी एक ही ऐसे ऊपर से आ करके ऐसे पानी पी लिया, तो बड़ा अमेजिंग लगा उनको। और फिर वो जॉन के बारे में सोच रहे थे कि ये ठीक है, एक तरह का सेवा कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसे ही, जैसे कहेंगे चमचागिरी करके, जैसे ना एक तरह के वैसे ही सेवा कर रहा है। तो उसके बाद माइकल एक और बार प्रभुपाद से मिलने गए और कुछ चर्चा करी। उसके बाद क्या हुआ, एक घटना हुई कि प्रभुपाद जी एक बार नहा रहे थे और उन्होंने देखा कि साबुन जमीन पर पड़ा है। तो उन्होंने जॉन को कहा कि ये साबुन जमीन पर कैसे है, इसको ना सही जगह पर रखना चाहिए, किसी का पैर फिसल सकता है और कोई गिर सकता है। तो जॉन वो 17 साल का बालक था और बहुत ही सनकी था, तो उसको सुन के पता नहीं ऐसा लगा कि मतलब क्या कह दिया मुझे, और खूब वो स्वामी जी को प्रभुपाद जी को सुनाने लगा और बहुत ही प्रभुपाद ने उसमें सहा। और अपने घर से वो एक लॉफ्ट था, लॉफ्ट मतलब जहाँ पे एक स्टोरेज का, जहाँ पे बड़ा सारा सामान रखा होता है। तो और हिप्पी भी था वो, अब वो सारा सामान लेके वहाँ से निकलना है। तो फिर जब जो माइकल से मुलाकात हुई थी स्वामी जी की, तो उन्होंने उनका नंबर भी लिया था। और माइकल की नाइट शिफ्ट होती थी, वो सुबह ही 5 बजे आए थे नाइट शिफ्ट करके और सो ही रहे थे। तो 7 बजे स्वामी जी का फ़ोन आ गया, 7 बजने से 5 या 10 मिनट पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में आपसे मिलने आ रहा हूँ और मैं 5 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी एकदम से आ रहे, क्या हो गया? तो फिर और देखा 5 मिनट के अंदर जब बेल बजी, स्वामी जी बाहर खड़े थे। अभी से उन्होंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने थे सही से। तो अब स्वामी जी ने कहा कि वो जो जॉन था उसने उसको ऐसे उसने मुझे बहुत बड़ा बुला कहा और मुझे निकाल दिया है। साथ में स्वामी जी के पास 2 उनके सूटकेस थे जिसे प्रभुपाद जी खुद ही कैरी करके आ रहे थे, भारी भारी थे। तो और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए, कहाँ पर है? तो माइकल अभी तैयार नहीं था, वो अपने एक लिविंग रिलेशनशिप थे किसी के साथ, उनके साथ रहते थे, और वो ये नहीं चाहते कि मैं जॉन की रिप्लेसमेंट बनूं। जैसे जॉन स्वामी जी की सेवा कर रहा था वैसे ही मैं ऐसी चमचागिरी करूं और उनको कुछ कुछ देता रहूं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अभी मैं रख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन एक कार नाम के व्यक्ति थे तो उन्होंने फिर क्या कहा कि 1 हफ्ता मेरे पास रह लीजिए। और उस समय जो प्रभुपाद जी भारतम बेचते थे $16 की, पूरे पैसे इकट्ठे करके सिर्फ $200 इकट्ठे हुए थे। तब वहाँ से फिर काल ने एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाया, वहाँ पे फिर 26 Second Avenue शॉप खरीदी, वहाँ पे जो शॉप थी वो तो शॉप थी, वहाँ पे रहेंगे कैसे, वहाँ पे कुछ टॉयलेट वगैरह नहीं है। तो उसके पीछे एक और घर लिया जो $85 का लिया, और $100 का यहाँ पर एक ये शॉप ली। अब $200 में से सिर्फ $15 बचे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बड़ा अपने लेटर्स में बताते थे कि मैंने कृष्ण के लिए बहुत रिस्क लिया, एक समय मेरे पास सिर्फ $200 थे वो पूरे ही चले गए। तो यहाँ पे देखते हैं प्रभुपाद का जीवन ही पूरा टॉलरेंस में, हिप्पियों के साथ टॉयलेट शेयर करना, हिप्पियों के साथ रहना। और जगन्नाथ जी की जब श्याम सुंदर जी DD काम कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, हर चीज़ को सहना। तो कई बार ऐसे कहा जाता है कि प्रभुपाद जी सही समय पर अमेरिका पहुंच गए थे इसलिए प्रचार हो गया, कि वहाँ पर एक लोग जो हिप्पीज लोग थे उन्होंने क्रांति कर दी थी, गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं थे इसलिए सही समय पर पहुँचे। लोग असंतुष्ट थे, परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए सही समय पर पहुँचे तो ज्ञान दिया तो लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, जब हिप्पियों के साथ डील करना पड़ता तब पता लगता था कितना टॉयलेट करना पड़ता है। यहाँ पर हम किसी इंडियन भक्त को भी प्रचार करते हैं तो इतना मुश्किल होता है, तो एक हिप्पी से कैसे बड़े बड़े बाल हो, सारी बुरी आदतें हो, लंबा चौड़ा शरीर हो, देख के इतना डर लगता है, उससे डील करना तो बहुत बड़ी बात है। सो इस प्रकार प्रभुपाद जी का जीवन ही पूरा सहनशीलता के ऊपर आधार है। यहाँ तक कि प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, अपने स्टैंडर्ड से प्रभुपाद ने ये अपने फॉलोअर में इम्बाइब करवा दिया कि भक्ति में कुछ भी हो जाए सहने को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे एक ये गुण जो प्रभुपाद जी के एक मुख्य शिष्य हैं, हिज होलनेस जयप्रकाश गोस्वामी महाराज, अभी पिछले हफ्ते ही वो 1 हफ्ते से अपने इलाज के लिए बड़े मंदिर में रुके हुए थे। तो वहाँ पे मोहन रूपू जी आए थे तो शेयर कर रहे थे कि महाराज आए 1 हफ्ते के लिए और बीच में कभी कभी महाराज को आईसीयू में भी बंद होना पड़ता है, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं महाराज, ऐसा कुछ नहीं दिखाते कि बहुत कष्ट हो रहा है शरीर में, और शरीर की हर चीज़ के लिए उनको दूसरों की हेल्प चाहिए। बॉडली इनकन्वीनियंसेस है, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खाने के लिए भी किसी और को खिलाना पड़ता है। और जब 1 हफ्ता यहाँ पर रहे थे बड़े मंदिर में, उसके बाद वो 25 घंटे की फ्लाइट से सीधा अमेरिका चले गए। यहाँ पर कि आप हर चीज़ के लिए आपको मदद चाहिए, और फिर महाराज से जब पूछा तुम्हारे अपने बारे में बता रहे थे कि पहले मैं एक साल में 13-14 वर्ल्ड टूर लगाता था, अभी मैं 4-5 वर्ल्ड टूर लगाता हूँ इस स्थिति के अंदर भी। तो ये भक्तों के अंदर, ये प्रभुपाद जी और उनके भक्तों के अंदर ये गुण प्रमुख दिखता है। और जो भी सिंसियर फॉलोअर है, भगवान निश्चित रूप से उसके इस गुण को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजना बनाएंगे ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी जब चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के प्रसंगों को बार बार गदाधर से सुनते थे और कहते थे ध्रुव महाराज की दृढ़ता के बिना और प्रहलाद महाराज की सहनशीलता के बिना कैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रसंग को बार बार सुनते थे ताकि ये गुण अपने जीवन में भी विकसित कर सकें। तो कभी कभार या फिर अब जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो ये एक प्रश्न आता है कि कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। तो जब हमने बताया पर्सनल अफेयर्स है तो व्यक्ति को अपने कर्मों के को मान के सहन करना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे भगवान की अवहेलना हो या भक्तों की अवहेलना हो वहाँ पे इस गुण का प्रयोग अपने पर्सनल अफेयर में नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब मिस्टर नायर से प्रभुपाद जी को डील कराता था तब वहाँ पर प्रभुपाद ने कुछ टॉलरेट नहीं किया कि ये तो हमारे कर्म थे, हमारी प्रॉपर्टी जानी लिखी थी, हमारे भाग्य से हमारे पैसे लिखे थे, ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने करेक्टिव मेजर्स लिए, पूरे स्टेप्स लिए कि ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मिल सके। और एक आता है कि जब हम इस गुण का अनुशीलन नहीं करते तो क्या इसके रेपरकशंस या क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है गोपीनाथ पटनायक का, कि जब हालांकि राजा के साथ उसकी साथ अच्छी दोस्ती थी तो उसको राजा को कुछ पैसे देने थे तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ घोड़े ले लीजिए। और तो राजा ने अपने पुत्र को, प्रिंस को भेजा कि आप ठीक है सही दाम पे उसके घोड़े ले लीजिए और अपना वसूल कर लीजिए। तो जब वो घोड़े लेने गए थे प्रिंस उनसे, जो पुत्र थे राजा के, क्योंकि उनको डर नहीं था गोपीनाथ पटनायक को राजा का क्योंकि उनसे अच्छी दोस्ती थी, तो जो उनके पुत्र थे उन्होंने घोड़े का प्राइस बहुत ही कम करा। और उनके पुत्र की एक आदत थी, वो बाद हवा में देख के ना कुछ स्टाइल मार देते, मतलब कि इसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी की, मतलब ऊपर देख के कुछ उनका एक तरीका था या हैबिट थी एक तरीके की। तो जब उन्होंने जब गोपीनाथ पटनायक ने सुना कि ये इतना कम दाम दे रहे हैं तो कहा कि मेरे घोड़े आपकी तरह ऐसे ऐसे नहीं करते, तो उनको बड़ा अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। तो अब फिर बाद में फिर ये हुआ कि उसने फिर जाके राजा को झूठ बोला, राजा के पुत्र ने, कि इसने ऐसे ऐसे पैसे खा लिया और ये सारा भोग कर रहा है और उसको चांगे में लटका देते हैं। चांगा मतलब ऐसे नीचे तलवार रख के ऊपर उसको लटका देते हैं और उसको मार देंगे। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो बचे भी। तो लेकिन बहुत सारी स्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जहाँ पर सहन करना ही एकमात्र रेमेडी होती है। जहाँ पर हम क्रांति करें या फिर बहुत विरोध करें तो सिचुएशन बहुत ही वर्स हो जाती है, जितनी पहले होती है उससे और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है। और इसमें बहुत सारा समय भी चला जाता है, बहुत सारी मेंटल एनर्जी भी चली जाती है, बहुत विरोध करना पड़ता है, कई सारे अपराध भी हो सकते हैं, होते ही हैं। और सारी चेतना फिर बदला लेने की भावना या फिर दिखाने की या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में चली जाती है। तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो लक्ष्य है वो भूल जाते हैं। तो बहुत सारा समय बचाया जा सकता है, बहुत सारी एनर्जी बचाई जा सकती है। सीमित एनर्जी है और सीमित ही हमारे प्रयास हो सकते हैं और सीमित ही बुद्धि है। तो इस सीमित बुद्धि के साथ, सीमित रिसोर्सेज के साथ, जितना ज़्यादा हम इस अगर गुण को विकसित करते हैं हम उतने फोकस रह सकते हैं अपने लक्ष्य के प्रति और उतना अपना समय और दूसरों का भी समय बचा सकते हैं। कभी कभी ना सहन करके हम दूसरों की सहनशीलता भी तोड़ देते हैं। तो कभी कभी अपने रजोगुण के कारण दूसरों का भी रजोगुण बढ़ा देते हैं। तो ये तो कुछ इस गुण का विकास करके हम इस अपने व्यक्तिगत स्तर पे, कम्युनिटी के स्तर पे, दूसरों भक्तों के स्तर पे हम बहुत योगदान दे सकते हैं। तो और इसका कैसे अनुशीलन किया जाता है, अनुशीलन का सिर्फ एक ही इसका है, इसकी प्रैक्टिस करके। कि समय कभी समान नहीं रहता, निश्चित रूप से ऐसी ऐसी योजनाएं भगवान के द्वारा आएंगी कि जहाँ पर ये मौके मिलेंगे हमें कि हम सहनशीलता को प्रदर्शित करें। कई सारे मौके हमें रोज़ डे टू डे रूटीन में भी मिलते हैं और ये भगवान के अवसर होते हैं ताकि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, भगवान में श्रद्धा बढ़ा सकें और सही बुद्धि का उपयोग करके एक अच्छा मार्गदर्शन भी दे सकें। तो इतना मैंने सोचा था इसमें, बाकी आपको कुछ प्रश्न हो या कुछ किसी कुछ कमेंट हो कुछ कुछ वरिष्ठ भक्त को। हरे कृष्ण। यस प्रभु।
सो थैंक यू वेरी मच रसाल गुरु फॉर वंडरफुल लेक्चर। तो आपने सहनशीलता के ऊपर इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक भक्त के जीवन में कैसे उसको जो है पर्सनल अफेयर्स के अंदर किस तरह से उसको जो है टॉलरेट करना चाहिए। अलग अलग सिचुएशंस हमने देखा। हम तो और भी हम देखते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वो समंतक मणि वाला जो है एक केस आता है, जब भगवान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है तो भगवान जो है उसके पीछे जो है सर्च करते हैं, इधर उधर जाते हैं, देखते हैं, तो ही डिडंट टॉलरेट दैट थिंग। वैसे और भी कई जगह आता है कि जहाँ पर जो है मतलब वो देखते हैं इस चीज़ को कि सो समन्वय कैसे करना चाहिए। लाइक एक एंड आपने बताया कि जो है पर्सनल अफेयर से जो उसको सहनशील ये क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, बट दूसरे एंड में देखते हैं कि जो है वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हाउ टू से दिस।
हमने इसके दोनों पहलू बताए थे, जिस मैंने दोनों पहलू बताने का प्रयास किया। पर्सनल अफेयर के लिए इसको हम सहते हैं, लेकिन जब किसी भक्त पर या फिर किसी भगवान की अवहेलना होती है तब टॉलरेंस की भी एक यूटिलिटी है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है कहाँ पे नहीं करना। सहनशीलता का मतलब ये नहीं कि बाहर लोग सहनशीलता का मतलब ये मानते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं कहता, ये एक वीकनेस मानते हैं, है ना, कि व्यक्ति बहुत हम्बल है, सहन करता है तो उसको दबाते रहे। तो सहनशीलता की भी एक यूटिलिटी है कि जब भगवान के भक्तों या भगवान की अवहेलना हो, जैसे भगवान पर आरोप लगाया गया था तो उस पर, तो तब यहाँ पे
यहाँ पर तो भगवान खुद ही जो है कर रहे हैं, भगवान के ऊपर।
मैं चाहूँगा कि कुछ सीनियर भक्त इस पर बता सकें, क्योंकि ये एक लीला का पाठ है या फिर क्या है।
बड़ा अच्छा वो रेफरेंस निकाला है आपने, मैं आप ही को कोट करूँगा। व्हाट यू सेड दैट बट द पर्सन व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ लीडर सो ही हैज गॉट अ डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी देयर, ही इज नॉट अटैक्ड बिकॉज ही इज अ पर्सन, देयर ही वाज अटैक्ड एज अ लीडर। सो आई उस वक्त मेरे को ऐसा लगता है उस वक्त, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है पूरे एक कम्युनिटी के दाव पे और एक पोजिशन के दाव पे, कि उस टाइम पे भगवान इज नॉट इन व्रज वेयर ही इज कृष्णा, ही इज नॉट गॉड, देयर ही इज किंग। और अगर राजा पे जो है जालसाजी का इल्ज़ाम लग जाए तो नीचे जो रहते हैं तो उनकी फिर क्या बिसात है। तो जहाँ जहाँ राजा ही चोर है, जैसे हम कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, फिर वहाँ क्या होगा, एक रुपये की भाजी एक रुपये का खाजा। देर इज़ नो गवर्नेंस देन, देन देर इज़ नो गवर्नेंस देन देर इज, यू कैनॉट एक्सपेक्ट, अगर राजा चोर है देन ही विल डिलीवर जस्टिस। सो देर इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव टू डिफेंड, इट्स नॉट इवन अ डिफेंस, इट्स एक्चुअली डिफेंडिंग द पोजिशन, नॉट हिज ओन पर्सन। उनको अपना क्या, हमने देखा भी बाद में कि श्यामंतक मणि जो है जब वो लेके आया वो जामावती वाला पूरा इंसिडेंस आता है उसके अंदर। सो इज नॉट आफ्टर दैट, दैट्स व्हाट आई फील।
तंत्रा श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। जय गुरु श्री प्रभुपाद की। जय।